एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है आराधना शांति करने का यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं तो हमें ग्रहण कर। हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, हमारे मनों को खोल दे और समझ शक्ति दे। मेरे श्रोताओं के संग पिता विशेष कर कि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में आ सके। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, मुझे बुद्धि दे, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे लोगों को तेरी इच्छा के अनुसार बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है प्रार्थना जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यीशु के शिष्यों ने उसके पास आया और उससे विनती की, उससे आग्रह किए कि हमें प्रार्थना करने सिखाइए, क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने सुना था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा अपने शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाया था। यीशु ने उन्हें प्रार्थना करने सिखाया। परमेश्वर की संतानों को प्राप्त एक अद्भुत विशेष अधिकार है, यह है प्रार्थना के जरिए। प्रार्थना के माध्यम से हम जरूरत के समय मदद के लिए दया और अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। हम पाते हैं इब्रानियों 4:14-16 में, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह अभी परमेश्वर के दाहिने हाथ स्वर्ग में मौजूद है। वह हमारे लिए प्रार्थना करता है, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, हम याब बांध कर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और दया और अनुग्रह पा सकते हैं, क्योंकि वह हमारा सहायता करने के लिए हमेशा है। दूसरा, प्रार्थना के द्वारा हम शांति पा सकते हैं जो हमारे हृदय और मन की रक्षा करती है। फिलिप्पियों 4:6-7 में हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर से हम विनती करने पर शांति पाते हैं, हमारे जीवन के लिए सुरक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रार्थना का विशेष अधिकार यह मानता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देगा। सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं होती। नीति वचन 28:9 कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ प्यारो, यदि हम परमेश्वर के बातों को नहीं मानेंगे, उसके व्यवस्था के बातों को नहीं पालन करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे प्रार्थनाओं को सुनना नहीं चाहेंगे या उसका उत्तर देना नहीं चाहेंगे। वास्तव में परमेश्वर सभी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। हम पाते हैं यशाया 59:1-2 में, यदि हमारे जीवन में पाप है, यदि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप दीवार के समान खड़े होते हैं, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर की तरफ नहीं पहुंच सकता है, परमेश्वर की ओर नहीं पहुंच सकता है। 1 पत्रस 3:12 में पत्रस कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसलिए हमें स्वच्छता से, धार्मिक हृदय से प्रार्थना करना है। यीशु ने एक व्यक्ति की प्रार्थना का वर्णन किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। इसका वर्णन है लूका 18:9-14 में। यह दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाय अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और वो आगे कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वह अपनी बड़ाई कर रहा था और वह अपना जीवन को दूसरों से तुलना कर रहा था। हम आगे पाते हैं कि परमेश्वर के सामने इसका प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं हुआ। लेकिन आगे हम देखते हैं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, यह चुंगी लेने वाला मनुष्य क्या हुआ, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, यीशु मसीह कहता है, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना क्या है? अपनी पहाड़ी उपदेश में यीशु ने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा। यह हम मत्ती 5 अध्याय में पाते हैं, 5 से 7 अध्याय में पाते हैं। विशेषकर उस प्रकार की प्रार्थना जो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाती है, इसका अध्ययन हम करेंगे, जो कि यीशु मसीह ने सिखाया है। इसे हम मत्ती 6 अध्याय में पाते हैं। इस पर हम थोड़े देर के लिए कुछ नज़र डालेंगे, जहाँ यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में सिखाया। मत्ती 6:5-15 में यीशु ने कहा, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किनको अच्छा लगता था? ये कपटियों को, फरीसी लोग ऐसा करते थे। यीशु कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने यह आदर्श प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया, जो हम मत्ती 6:9-13 में पाते हैं। उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम इस रीति से कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्यारो, यीशु हमें परमेश्वर को पिता कह के संबोधन करने को कहता है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हमारा पिता भी है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आप विश्वास करें। बहन एलन वाइट कहती है कि हम पिता को अपने हृदय खोलकर बतलाएं, जैसा कि हम अपने मित्र को बतलाते हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता को खोल करके बतलाएं। सबसे पहले हम पाते हैं यीशु हमें बता रहे हैं कि प्रार्थना के संबंध में क्या नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं, पाखंडियों की तरह प्रार्थना मत करो, जो क्या करते हैं, जो आराधनालयों में या सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, इसलिए उनको उनका इनाम मिल चुका है। वे क्यों ऐसा करते हैं कि वे लोगों के द्वारा देखे जा सके। यीशु कहता है, वास्तव में वे पुरुषों द्वारा देखे जाने चाहते हैं, लेकिन यही उनका इनाम है, यहीं पर उनका इनाम मिलता है और इनका इनाम यहीं ख़त्म होता है। वह क्या है? लोगों की प्रशंसा, और उसका इनाम का अंत यही है। उन्हें परमेश्वर से कोई इनाम या आशीर्वाद नहीं मिलता। यीशु सभी सार्वजनिक प्रार्थनाओं की निंदा नहीं कर रहे हैं यहाँ। इससे इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की थी, इसके विषय में हम पाते हैं मत्ती 11 का 25 में और यूहन्ना 11 का 41 में भी, जब उन्होंने लाजर अपना मित्र को मृत्यु से जीवित किया, उन्होंने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से प्रार्थना किया और लोगों के सामने प्रार्थना किया। पौलुस भी इस तरह का प्रार्थना किया, उसे हम पाते हैं प्रेरितों के काम 27 का 35 में। यहाँ पर वही बात जोर दी गई है जो मत्ती 6 का 1 में कही गई है कि लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। तो फिर हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने? प्रार्थना जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है वह है परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रस्तुत, मनुष्यों को नहीं। मत्ती 6:6 कहता है, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। हमें गुप्त रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करना है और वह हमारी सब बातों को, सब जरूरतों को जानता है। वह हमारी जरूरतों को, हमारी विनती को पूरा करेगा। गुप्त रूप से प्रार्थना करने का मुख्य विचार यही है। ईमानदार और विनम्र उपासक जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रखता, उसे अपनी भक्ति के लिए एकांत कोना या स्थान सबसे उपयुक्त लगेगा। जो व्यक्ति गुप्त रूप से बहुत प्रार्थना करता है वह मनुष्यों को नहीं बल्कि परमेश्वर को दिखाई देने के लिए प्रार्थना करता है। वह परमेश्वर को ही दिखाई देने के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर को सुनने के लिए प्रस्तुत करता है, मनुष्यों को नहीं। मत्ती 6:7 हमें व्यर्थ पुनरावर्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए, जैसा कि अक्सर बुद्ध पुरुष धर्मों द्वारा किया जाता है। मूर्ति पूजक अपने देवताओं को ऐसी अंतहीन प्रार्थनाओं से थका देने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें थका देने की कोशिश करते थे। केवल सूत्र बार बार दोहराए जाते थे। यहूदियों के पास ऐसे प्रार्थना सूत्र थे, कैथलिकों के पास भी, वे उनकी माला के रूप में हैं। यहाँ सभी पुनरावृत्ति की निंदा नहीं है बल्कि व्यर्थ निष्ठाहीन बेकार पुनरावृत्ति की निंदा है। यीशु ने गतसमनी में प्रार्थना में अपनी बात दोहराई, इसको हम पाते हैं मत्ती 26:36-44 में। यीशु अपने निवेदन को नम्रतापूर्वक परमेश्वर के पास लाया, नम्रतापूर्वक परमेश्वर के पास लाया। पौलुस ने अपने शरीर के कांटे के बारे में अपनी विनती दोहराई, इसे हम पाते हैं 2 कुरिन्थियों 12:7-8 में। चूंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, इसलिए परमेश्वर द्वारा सुनी जाने वाली प्रार्थनाओं को अनावश्यक शब्दों से भरा होना जरूरी नहीं है। प्यारो, क्या आपने कभी पवित्र शास्त्र में दर्ज प्रार्थनाओं की संक्षिप्तता पर ध्यान दिया है? परमेश्वर शब्दों की मात्रा से नहीं बल्कि हृदय की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। नमूने के अनुसार चढ़ाया गया, जैसा कि हम मत्ती 6:9 का पहला भाग में पाते हैं। वाक्यांश इस प्रकार से पता चलता है कि यह प्रार्थना करने का एक तरीका है। यह बोतलबंद प्रार्थना नहीं है जैसा कि कभी कभी किया जाता है। उचित प्रार्थना का स्वरूप सबसे पहले सरलता, इसलिए वचन 8 कहता है शब्द पर ध्यान दे, या आगे जो कहा गया है उसे पहले कही गई बात से जोड़ता है। यीशु की प्रार्थना का नमूना अन्य जातियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बहुत से शब्दों के विपरीत एक चित्रण है। प्रार्थना में ही शब्दों की संक्षिप्तता पर ध्यान दे, फिर इसकी विषय वस्तु में उचित प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर और उसके नाम अर्थात उसके अस्तित्व और चरित्र की हम श्रद्धा करें। मत्ती 6:9 पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य और उसकी इच्छा की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। मत्ती 6:10 भौतिक आवश्यकताओं की मांग करना हम कर सकते हैं। मत्ती 6:11 के अनुसार साथ ही हमारी आध्यात्मिक जरूरतें, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करिए, बुराई से सुरक्षा और उद्धार के लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह उसे सुनेंगे, परमेश्वर उसे सुनेंगे और उसके लिए हमारे रक्षा के लिए उपाय करेंगे। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान हमें परीक्षा में लाने के लिए हरदम कोशिश करते रहता है। प्यारो, हमें दयालु भावना से अर्पित होना है। प्रार्थना के नमूने में ही यह दर्शाया गया है, अन्यथा हम अपने लिए दया की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कहा, तुम यदि दूसरों के पाप क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तेरे पापों को क्षमा करेगा। हम क्षमाशील हृदय से परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यह एकमात्र अवसर नहीं है जब यीशु ने प्रार्थना के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने कई बार अपने बाद में भी अपने चेलों को सिखाया। उसके शिष्यों ने उसे प्रार्थना करने सीखने आए। उसने उन्हें प्रार्थना में दृढ़ता, विश्वास और विनम्रता के महत्व के बारे में सिखाया। लेकिन इस उपदेश में यीशु ने ऐसी प्रार्थना पर जोर देने की कोशिश की जो मनुष्य को नहीं बल्कि ईश्वर को दिखाई देना, ईश्वर द्वारा सुने जाने के लिए, मनुष्य द्वारा नहीं। जो अब परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है उसे बेहतर कौन जानता है कि किस प्रकार की प्रार्थना करें। इसलिए प्यारों, आइए हम नम्रतापूर्वक विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हम उस प्रकार की प्रार्थना करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारे जीवन का निर्वाह करता है। हे पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने सिखा जो कि तुझे प्रसन्न हो। हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं परंतु तुझ से संपर्क बनाने के लिए, तुझे बतलाने के लिए हम प्रार्थना करें। तो हमारी प्रार्थना को पवित्र आत्मा से परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें। आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।